जी उमेर साहब, सो वी आर लाइव। और देखे जी, वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। और क्या आगाज हुआ है, मतलब क्वालिफाइंग राउंड में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतना बड़ा अपसेट हो जाएगा। वो टीम जिसको पाकिस्तान दो बार ना हरा सकी, इंडिया एक बार ना हरा सकी, एशिया कप के चैंपियंस नामीबिया के हाथों यार इतनी बड़ी शिकस्त, क्या कहते हैं
यार ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह श्रीलंका एशिया कप में खेला है, जिस तरह इसने इंडिया पाकिस्तान को हराए थे मैचेस, तो मुझे तो लग रहा था कि इनकी टीम काफी स्ट्रांग है। लेकिन आज काफी ज्यादा अपसेट हुआ है श्रीलंका के लिए, और मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप का स्टार्ट जो हुआ है जो इस मैच से, तो श्रीलंका काफी डर गई होगी और बस ये सूरत हाल है। आप मुझे ये बताएं कि आज का जो मैच हुआ है श्रीलंका वाला, हम देखते हैं कि शुरू में श्रीलंका डोमिनेट कर रही होती है गेम को, ठीक है, 93/4 होते हैं आखिरी आई थिंक वो 14th ओवरों तक। तो जो लास्ट सिक्स ओवर्स में जिस तरह नामीबिया खेला है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
बिल्कुल सर, 93/6 होते हैं 14th ओवर में, 4 नहीं थे। मतलब जैसे ही डेविड वीसे आउट हुआ है, तो उस टाइम पे तो लग रहा था कि कहानी अब बैड होगी, अब सारे लोग कहेंगे अच्छा यार ये तो अब नामीबिया का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जिस तरह वो फ्रायलिंक और जे जे स्मिथ एंड में आए, और जो उन्होंने यार हिटिंग की, खास तौर पे इंटेलिजेंट हिटिंग, उमेर साहब ग्राउंड था कोई ओवल शक्ल का, 84 मीटर्स की स्ट्रेट की बाउंड्री थी, 55-60 मीटर्स की बाउंड्री थी स्क्वायर पे, लेग और ऑफ पे, तो बिल्कुल लेग और ऑफ पे बाउंड्रीज बहुत छोटी थी।
ये तो बड़ी छोटी है
बिल्कुल। तो बड़ा यूटिलाइज किया यार उनके फ्रायलिंक ने भी, और क्या नाम है, जे जे स्मिथ ने भी, और एक तो बड़ा लंबा छक्का मारा जे जे स्मिथ ने, 94 मीटर्स का जाके स्टैंड में गिरा बड़ा दूर, शेल शॉट थे। श्रीलंका की टीम के साथ मेर सब वही हुआ है जो इन्होंने पाकिस्तान की टीम के साथ एशिया कप के फाइनल में किया था, विकेटें गिरा के रन पड़वा दिए।
यार बिल्कुल काफी ज्यादा वही बात है, अपसेट है बहुत बड़ा श्रीलंका के लिए ये। लेकिन जलाल आपने अभी जो बात की है स्टेडियम के बारे में, ये मुझे थोड़ी काफी ज्यादा क्रिटिकल बात लग रही है पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से। तो आप क्या देखते हैं, अगर पाकिस्तान का ये वाले स्टेडियम पे मैच होता है वर्ल्ड कप का, जो कि मेरे ख्याल में मैंने देखा है शुरू के मैचेस में नहीं है, लेकिन अगर आप सोचें अगर होता है मैच, तो पाकिस्तान ये वाली पिच पे कैसे खेलेगा, क्योंकि जो फ्रंट की बाउंड्री 84 मीटर है और लेफ्ट और राइट हमारा 50-60 है।
यार देखो, रिजवान टाइप का प्लेयर तो शायद अच्छा खेल जाए क्योंकि वो लेग पे अच्छा खेलता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स जो लैप शॉटें नहीं मारते और जो स्वीप शॉटें नहीं मारते, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्ट्रेट की बाउंड्री तो बहुत ही बड़ी है। मतलब हम देख रहे थे कि फ्रायलिंक ने ना आखिरी ओवर में बड़ी बाटी शॉटें मारी हैं स्ट्रेट, लेकिन वो जाके वही बात है कि फील्डर के हाथ में जाती थी और इतनी तेज फील्डर के हाथ में गई कि दूसरा रन उन्होंने फील्डर की उस पर थ्रो पे ही ले लिया कि इतनी लंबी थ्रो है तो चलो भाग जाते हैं, सही है। तो मतलब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उमेर साहब तारीफ ये करनी होगी, लास्ट 34 बॉल्स पर नामीबिया ने 70 रन बनाए अपनी इनिंग्स में ना, तो वही मेरा ख्याल है डिफरेंस क्रिएट कर गए, क्या कहते हो?
यार बिल्कुल वही डिफरेंस हो गया क्रिएट, और मेरे ख्याल में यही वाला डिफरेंस हमारा T20 में काफी ज्यादा मैटर करता है। जो भी टीम हो उसका इंटेंट ऐसे ही होना चाहिए कि बेशक विकेटें वगैरह गिर गई हो, लेकिन आखिरी ओवर्स में आपने स्ट्राइक पकड़नी है, अग्रेसिव खेलना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी यहाँ पे काफी कुछ ये वाले सिनेरियो से सीख सकता है, और काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के जो इंटेंट शो करना कि लास्ट 34 बॉल्स में 70। हालांकि हमने देखा डेविड वीसे जो इनका प्लेयर है, आई थिंक वो एकदम आउट हो गया था, उसको चांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये लोग इतना अच्छा खेल गए, है ना?
नहीं भाई, वही बात है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एंड से 7th विकेट की इनकी, मेरा ख्याल है नामीबिया की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई है, इनकी अपना भी रिकॉर्ड है। अच्छा। और मतलब यार श्रीलंका को कहना नहीं चाहिए, लेकिन वही वाले एशिया कप वाला फाइनल याद आ रहा था मुझे, तो जैसे हमारी फीलिंग्स नहीं थी उसी तरह हमारे प्लेयरों की जो शक्लें बनी हुई थी जब राजापक्सा और हसरंगा मार रहे थे, तो इनकी भी उसी तरह शक्लें बनी हुई थी। पेसर्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे बॉल करें कहाँ पे ना बॉल करें। अब देखो मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया इनिंग्स के एंड में नामीबिया की तरफ, और जैसे ही श्रीलंका की इनिंग्स का स्टार्ट हुआ है उनके बैटर्स का, वो भी बड़ा बुरा हुआ है, पावर प्ले में 3 विकेटें गिर गई, क्या कहते हो? कभी भी श्रीलंका वो लगा नहीं कि रन चेज में इन है।
यार बिल्कुल पावर प्ले में जो 2 विकेटें 2 बॉलों पे गिर गई और उसके बाद इन्होंने 33-34 रन मारे पावर प्ले में, तो यहां से नजर आ रहा था कि आयरलैंड जो है वो शुरू से डोमिनेट कर रहा है बॉलिंग में। उन्होंने वेरिएशन शो की, उन्होंने बॉलर्स के जो क्या कहते हैं स्पेल्स भी वेरिएट किए, मतलब शुरू में दूसरा बंदा करा रहा था, फिर दूसरा तीसरा, मतलब काफी एक अच्छी वेरिएशन, काफी एक वो डिफरेंस हमें नजर आया उनकी बॉलिंग में के जो वो पेस करा रहे थे। तो मेरे ख्याल में आज का क्रेडिट जाता है नमीबिया को लाजमी। और जो जलाल दूसरी आपने बात की कि बॉलर्स प्रेशर में आ गए श्रीलंका के, वो वहां पे मोमेंटम नहीं पकड़ सके, ये वाली बात शनाका ने भी बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में
हाँ
कि यार हमारे जो बॉलर्स हैं वो लोग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सके जिस तरह बोला गया था। तो ये काफी एक आप समझ लें अलार्मिंग ही है, क्योंकि वर्ल्ड कप देखें खड़ा है आगे। और अभी तो एक और खतरा है जलाल साहब के, अगर
मुझे समझ लग गई है
अभी
मुझे
आप वो
खतरे
बात तो
की
समझ गए होंगे कि देखिए पाकिस्तान इंडिया साउथ अफ्रीका तो है ही है एक टफ, और अगर लेट्स सपोज श्रीलंका आ जाती है वो हमारे ग्रुप में और वेस्ट इंडीज आ जाती है, तो फिर तो काफी ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। क्या कहते हैं?
बिल्कुल यार, देखो कॉम्बिनेशन इस तरह एक्सपेक्ट हो रहा था कि इस ग्रुप से श्रीलंका टॉप करेगी और दूसरे वाले ग्रुप से वेस्ट इंडीज़ टॉप करेगी, तो वेस्ट इंडीज़ हमारे ग्रुप में आ जाएगी और साथ एक हल्की टीम आ जाएगी, और श्रीलंका चली जाएगी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाले ग्रुप में और एक हल्की टीम चली जाएगी। अब सिनेरियो बदल गया है इस डिफीट के बाद। अब ये हो सकता है कि श्रीलंका इस ग्रुप में सेकेंड पोजिशन पर आ जाए और वेस्ट इंडीज़ वहाँ से फर्स्ट पोजिशन पर आ जाए, तो हमारा ग्रुप तो ग्रुप ऑफ डेथ बन जाएगा। मतलब पूरे एशिया कप वाली टीमें ही आ जाएंगी ऑलमोस्ट, अफगानिस्तान के अलावा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और साथ फिर वेस्ट इंडीज। तो भाई काम खराब है मेरी
बिल्कुल
जान,
यार,
काम
काफी
खराब
ज्यादा
है।
काम खराब है, काफी ज्यादा है। और मेरे ख्याल में वही बात है कि जो जो हम बात कर रहे थे कि यार ये वाली टीम से, ये वाले ग्रुप से जो है वो इंडिया साउथ अफ्रीका ज्यादा चांसेस है, लेकिन आपको पता है वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि वर्ल्ड कप में ऐसा अपसेट दे दी थी दूसरों को, तो उनका कुछ समझ नहीं आती। तो काफी टफ है हमारा ग्रुप ये वाला।
बिल्कुल सर, इसमें जो है कमेंट्स लेते हैं, थोड़े से शामिल करते हैं। गुलरुख परवेज कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू पीपल, गॉड ब्लेस यू बोथ, आपका भी, वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम असलाम, थैंक यू। हाँ
अच्छा, जीशान साहब कह रहे हैं कि हेलो गाइस, लुकिंग गुड बोथ ऑफ यू, यू गाइस आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, कीप गोइंग। थैंक यू जीशान
थैंक्स
साहब, तो
जानी,
अपने
थैंक्स
दोस्त
शाड़ा
हैं
जी।
तो घर की बात
हाँ
होगी।
ये भी बड़ा क्रिकेट के शौकीन है भाई, इनको भी हम बोलते हैं कि कभी सीन शीन बनाए। हाँ
हाँ अभी इंडिया पाकिस्तान आ रहा है ना वर्ल्ड कप में, अगर बारिश ना होगी उस पर भी बात करनी है। अभी पाकिस्तान के पूरे
हाँ
स्क्वाड की बात करनी है आज डिटेल में, आज पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करनी
बिल्कुल
है और हम अपनी आइडियल प्लेइंग 11 भी बनाएंगे जी, उस पर भी बात करते हैं। शाहरुख खान साहब ओके कह रहे हैं, आई डोंट नो किस सिलसिले में ओके कह रहे हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, SS98 साहब क्या कहते हैं भाई, उमैर ज़रा पढ़ें अगर आप पढ़ सकते हैं।
SS98 कह रहे चेजिंग टारगेट अबव 160 विल बी वेरी ट्रिकी इन द बिग ग्राउंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द बेस्ट फील्डिंग साइड विल विन द वर्ल्ड कप। यार बात आपकी ठीक है, 160 रन से अबव अगर इस तरह के जो ग्राउंड हो आपके, जहां पे आपके जो मतलब आपकी जो बाउंड्रीज बड़ी हो, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होता है। वो वाले सिनेरियोस में मेरे ख्याल में आपकी जो रनिंग है बिटवीन द विकेट्स वो काफी मैटर करती है कि आप वहां पे गैप किस तरह निकाल रहे हो। जिस तरह जैसे हमने देखा न्यूजीलैंड वाले मैच में, जलाल आपको याद होगा वो वाला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का,
बिल्कुल
जिसमें हम
याद है
बात
सर,
कर रहे थे कि यार वो वाली पिचेस में आप गैप निकालो रन लो उस तरह करके, तो काफी इंपॉर्टेंट है।
देखिए गौरव चौधरी साहब भी कह
तो
रहे हैं कि श्रीलंका ग्राउंड का फायदा नहीं उठा सकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमीबिया ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, अभी हमने नमीबिया की बैटिंग की तो बात की, अभी हम बॉलिंग भी आते हैं। बैटिंग में भी उमेर साहब जैसे हमने कहा एंड में उन्होंने बड़ी डायमेंशन जो स्क्वेयर की बाउंड्रीज है उनको बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, और स्ट्रेट की बाउंड्री को भी यूटिलाइज किया जब जब उन्होंने डबल निकालने थे, तो ये तो बिल्कुल
बिल्कुल
सही बात की है इन्होंने। मोहम्मद साद इमरान कहते हैं सलाम, क्रिकेट फीवर 11 हेयर। अच्छा साद इमरान साहब, ये आप अपने
सही।
ओरिजिनल अकाउंट से आ गए आज
बस
हैं
देख ले, चले फाइनली हमें फिर इनका नाम भी पता चल ही गया है। हम लोग
बिल्कुल
हमेशा क्रिकेट फीवर भाई कहते थे, चले
बिल्कुल
आज से फिर
बिल्कुल,
साथ भाई बोलेंगे। अब पता नहीं ये इन्हीं का अकाउंट है या कोई और अकाउंट है।
नहीं, इन्हीं का ही होगा। अच्छा गौरव साहब कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज टफ टाइम नहीं देगी, बिल्कुल सर हो सकता है टफ टाइम ना दे, लेकिन देखें सिचुएशन ये हो जाएगी ना कि ऑन पेपर अगर उधर दूसरे ग्रुप से वेस्ट इंडीज टॉप कर देती है, इधर से श्रीलंका सेकंड पे आती है, तो पाकिस्तान इंडिया का ग्रुप बड़ा टफ हो जाएगा फिर, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसी भी है आप बड़ी टीम को किसी दिन भी हरा तो सकती है। क्या कहते हो मेहर साहब आप?
बिल्कुल ऐसे ही है यार, मुझे तो खैर काफी मैचेस याद है यार वेस्ट इंडीज के, कि वो लोग फेवरेट नहीं होते थे लेकिन खेल जाते थे। आपको याद होगा आई थिंक वर्ल्ड कप भी था वो, कोई क्वार्टर फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वाला, कि जिसमें ऐसा लग गया था इंडिया जीत जाएगा, लेकिन आखिर में उसमें पहले मैच में किसने मारे थे यार छक्के काफी, एटी नाइनटी रन मारे थे,
या
वो
टी
खैर
ट्वेंटी की
इंडिया को
बात
हरा
करो
दिया था मैच। हाँ, T20 वर्ल्ड कप की बात करो,
यार, आई
बिल्कुल
थिंक
क्वार्टर फाइनल
उसमें
का।
उसने मारे थे, वो जो उनका ओपनर नहीं आता था, सिमंस था आई थिंक, वो नो बॉल भी हो गई थी उसमें आई थिंक बुमराह से, और काफी वो फिर मार भी पड़ी थी। अच्छा, उसमें
करेक्ट
वेस्ट
करेक्ट,
इंडीज ने बहरहाल पिछले वर्ल्ड कप में भी, 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया था, और उसी शायद वर्ल्ड कप में, वो जो 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप था उसमें, वो वेस्ट इंडीज वाली जो हार है वही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारी पड़ी थी, और पाकिस्तान फिर आगे नहीं जा सका था सेमीफाइनल में। उसके अलावा पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हराया था उस वर्ल्ड कप में। अच्छा हाँ बिल्कुल, लैंडन सिमंस था, गौरव चौधरी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सर। अच्छा उमेर
बिल्कुल
साहब, गौरव चौधरी साहब ने ये पीछे बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कि
जी
श्रीलंका
जी
ने
बिल्कुल
लॉन्ग साइड पर शॉट मारे बाउंड्री की, मतलब वो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, और कैच दिए। अच्छा, अब इस पे क्रेडिट आप ये भी देना पड़ेगा कि जिस लेंथ पर और जिस लाइन पर खास तौर पे उन्होंने बॉल की, आपके नामीबिया के बॉलर्स ने, उनके एक बॉलर हैं जी शिकोंगो, उन्होंने 2 बॉलों पे 2 आउट किए, तीसरी बॉल पे भी उनकी हैट्रिक बॉल पे भी अपील हो गई थी, रिव्यू भी ले लिया, लेकिन राजा पक्सा बच के, मतलब
हैट्रिक रह गई।
पिच्ड आउटसाइड द लेग स्टंप, वरना माहौल बन गया था सर पहले मैच में ही, पहली हैट्रिक का। क्या कहते हैं इनकी बॉलिंग के ऊपर आप?
यार बॉलिंग इनकी काफी अच्छी थी, जिस तरह शिकोंगो ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया, और उसके बाद वही बात है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इन्होंने बॉलर्स को ट्राई किया है ना, कि एक ओवर उसने एक ओवर, फिर थर्ड ओवर कोई और करा
हाँ
रहा है, फोर्थ कोई और करा रहा है, और फिर उसके बाद जिस तरह की पिच थी, पिच हो गई थी स्लो, तो वो वाले हिसाब से इन्होंने बॉलिंग कराई, वेरिएशन भी उस हिसाब से फेंकी, तो
बिल्कुल
मेरे ख्याल में काफी पॉजिटिव, एक काफी वो पॉजिटिव एक वाइब आ रही है इनकी टीम से। तो देखते हैं, अभी और भी आगे मैचेस हैं, उस पे अगर यही वाला प्लान इसी तरह एग्जीक्यूट करते रहते हैं तो काफी अच्छा एक वो हो जाएगा सीन इनका।
बिल्कुल यार, देखो डेविड वीसे बैटिंग में तो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 4 ओवर्स की में 16 रन दिए, 2 विकेटें लिए हैं, और इन 4 ओवरों में 13 डॉट बॉल्स हैं, ठीक है। और ये
ठीक है
श्रीलंका की
यार।
टीम हमने देखा है कि ऐसी टीम नहीं है, जिस तरह ये इनकी विकेटें गिरती भी हैं तो ये नॉर्मली अटैक पे जाते हैं, लेकिन इन्होंने उनको मतलब कहीं पे भी कोई जगह ही नहीं दी कि ये कहीं से जो है ना वे आउट इनका हो सके। जिस तरह एशिया कप में राजा पक्सा और हसरंगा ने काउंटर अटैक किया, ये वो काउंटर अटैक नहीं कर सके, इवन दो एक पार्टनरशिप लगी थी शानका और राजापक्सा की, बट वो भी उसमें भी वो कोई फ्लुएंसी नजर नहीं आ रही थी। तो ओवरऑल सारे इनके बॉलर्स को अगर आप ऑलराउंड देखो, बर्नार्ड की बॉलिंग देखो, इकोनॉमिकल 4.5 की इकोनॉमी, 2 विकेटें हैं, शिकोंगो ने तो माहौल बना ही दिया था, जेजे स्मिथ ने, देखो जेजे स्मिथ और फ्राइलिंग की जबरदस्त इस वजह से ज्यादा परफॉर्मेंस है, बैटिंग में भी दोनों ने परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में भी दोनों ने परफॉर्मेंस दी है, तो ऑलराउंड जो है ना वो परफॉर्मेंस की वजह से फ्राइलिंग मैन ऑफ द मैच भी रहे
बिल्कुल
हैं। क्या ख्याल है?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जलाल आप देखें, श्रीलंका की लाइनअप भी अच्छी थी, बैटिंग लाइनअप
हाँ
अगर आप शमिका करुणा रत्ने तक, इनके आप वो कह सकते हैं कि वो खेलने वाले बैट्समैन थे, स्लो कर सकते हैं आके, तो लेकिन वही बात है, क्रेडिट जाता है नामीबिया को, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई है, और खास तौर पे जो फ्रेलिक है और जेजे स्विट है उनको जाता है क्रेडिट, बस मैन ऑफ द मैच उसको मिल गया, स्मिथ को नहीं मिला साथ,
हाँ नहीं फ्रायलिंग
हालांकि
को ही
दोनों
मिलना
साथ
चाहिए
साथ
था,
कर रहे
वैसे
थे। हाँ
उसने थोड़ी ज्यादा
उसने
परफॉर्मेंस की
दो
है।
विकेट।
गौरव साहब
हाँ
कहते हैं मॉर्कल उनका कोच है, इसलिए उसने बॉलर अच्छे से कंडीशन यूज किए, बिल्कुल ये भी एक रीजन हो सकती है। नमेबिया, अच्छा नमेबिया के बारे में SS98 कह रहे हैं बेन शिकिंगो फ्रॉम नमेबिया इज सम टैलेंट, बिल्कुल सर, बॉलिंग तो उनकी अच्छी लग रही थी। इवन
यार
दो
ये
मैं
मुझे लगता है ये आईपीएल वगैरह खेले में, क्या
नहीं नहीं
सीन
नहीं
है इनका?
नहीं 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 आईपीएल शाईपीएल बेचारे का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन ये इनकी लास्ट उमेर विकेटें इतनी ज़्यादा चल नहीं रही थी, एक आध विकेट विकेट थी इनकी, तो काफ़ी अरसे बाद इनको विकेट भी मिली है, लेकिन 2 बॉलों पे 2 मिल गई एक साथ, तो बस देखो जब
हाँ चले,
किस्मत मेहरबान होती है तो फिर छप्पड़ फाड़ के होती है।
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा अब इसमें हम, अब इस पे तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा अपसेट है, जितना मर्जी बात करें इससे हुआ ये है कि वर्ल्ड कप थोड़ा और एक्साइटिंग हो गया है, सही है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा स्लाइटली उमेर दूसरा मैच भी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उस पर हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था, फिर आगे पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और नैदरलैंड्स का मैच भी होता है, लो स्कोरिंग मैच था, आखिरी
बिल्कुल
ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट बॉल तक गया, और जो है नेदरलैंड्स जो है वो जीत गई 3 विकेटों से, तो ये जो है ना एक दूसरा मैच का रिजल्ट था, शायद ये एक्सपेक्टेड भी
अच्छा, वो
था।
मैच भी बड़ा सही गया है ना।
हाँ हाँ सही तो गया है।
नहीं, लेकिन वो मैच भी टफ गया है, काफी मतलब ना वो एनर्जेटिक थे दोनों तरफ से टीमें, बाकी जलाल एक और चीज है, श्रीलंका का बॉलर आपको याद होगा जो मधुशंका, वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी
हाँ।
जगह एक रिप्लेसमेंट आई है बिनोर फर्नेंडो की,
बिनोरा
उसके बारे में क्या
फर्नेंडो आए
ख्याल
हैं
है आपका?
भाई,
बिनोरा फर्नेंडो, हाँ, तो उसके
बिल्कुल
बारे में क्या ख्याल है आपका?
यार बहुत बड़ा ब्लो है। जो हम एशिया कप में इस बंदे की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेफ्टी जो है आपका, ये अच्छी बॉल स्विंग भी
बिल्कुल
कर रहे थे। इवन तो तुझे याद होगा वो पहला ओवर जो फाइनल में कराया था इसने,
ग्यारह
वाइडे
रन
शाइडे इतनी करा दी थी, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा
तब
कमबैक मारा था। प्रॉमिसिंग बॉलर लग रहा
बिल्कुल
था, लेफ्ट आर्मर के एक वैरायटी भी दे रहा था, तो बड़ा लॉस है। मतलब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया बेचारा, अभी टीम में आया था।
बिल्कुल
अच्छा उमेर,
बिल्कुल
इसमें एक आपका, आपने मुझे एक डेटा साइंटिस्ट होने के नाते एक डेटा साइंस का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट दिया। उसमें आपने
जी जी
बताया मुझे कि जो T20 वर्ल्ड कप्स हैं उसमें 25% चांस होता है छोटी टीम का। छोटी टीम से मुराद क्रिकेटिंग टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, जो ICC की नॉन रेगुलर टीम्स हैं उनका 25% चांस होता है कि वो बड़ी टीम को डिफीट करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ODIs में ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है परसेंटेज, यानी 12% चांस रह जाता है छोटी
हाँ
ICC की नॉन रेगुलर टीम्स का कि वो बड़ी टीम को
बिल्कुल
हरा सके। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि
बिल्कुल
T20 इवन आउट कर
हाँ
रहा है
हाँ
काफी
यार,
चीजों को।
हाँ जी बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जलाल ये वाले इफेक्ट से एक और चीज भी कुछ पता चल रही है कि देखिए T20 आपकी प्रॉपर उस तरह क्रिकेट गेम नहीं रही है, मैं जिस तरह इसको देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 50 ओवर्स होते हैं प्रॉपर, हर प्लेयर को एक चांस मिलता है, तो इसमें वही है, अगर आपके 2-3 ओवर अच्छे निकल जाए तो आपका आपका जो रिजल्ट होता है वो पलट जाता है। तो वैसे ये फैक्ट अच्छा है कि 25% है, काफी मोटिवेशन है जो सी टीमें, जो सी नॉन रेगुलेटरी जो टीम्स ICC की, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना दूसरे परस्पेक्टिव से, उससे ये कि मतलब यहाँ से पता चलता है कि जो सी टीमें ऐसी हैं जो सी ICC की मेंबर नहीं है, वो वाली टीमें टेक्निक में थोड़ा सा वो कम है, थोड़ा
हाँ, इसीलिए
उसकी
टेस्ट
क्या
मैच को कहते हैं ना कि
कहते
वो
हैं।
सबसे बड़ा टेस्ट होता है, कि उसमें दूध का दूध पानी का पानी, इसीलिए होता है कि अच्छी टीम ही उसमें मोर देन 90% चांस होता है कि वही जीतेगी। अच्छा ANZ साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं कंसिस्टेंट शो क्यों नहीं कर रहे। उमेर साहब आप जवाब दें इसका,
यार
कल्प्रिट आप हैं।
यार नहीं, मैं कल्प्रिट हूँ, मैं मानता हूँ यार, वो एक्चुअली बस थोड़ा सा इशू हो जाता है, थोड़ी कमिटमेंट आ जाती है, कोशिश तो होती है कि मतलब रोज आए लाइव, लेकिन बस थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, वर्क फ्लोज बना रहे हैं ताकि हम लोग कॉन्सिस्ट वो हो जाए, थोड़े कॉन्स्टेंट हो जाए इस चीज पे,
नहीं
और
नहीं
बाकी
जी,
टाइम का भी इशू आ रहा है, टाइम को भी थोड़ा हमने मैनेज करना है। जिस तरह हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी 8:30 बजे की, और
हाँ
जलाल हम कितने बजे आए?
हम 10 बजे हैं।
10 बजे आए, देखे यार, ये तो हमारी ये तो हमारा लेवल कंसिस्टेंसी का,
नहीं
तो
नहीं
ये
इसको
खैर
बेहतर
हमारे एंड पे
करेंगे बिल्कुल
मिस्टेक,
सर।
मेरे एंड पे मिस्टेक ज्यादा है।
ये आपने पॉइंट आउट किया, और हमारे जहन में भी ये है कि हम एक कंसिस्टेंट टाइम रखना चाहते हैं कि अराउंड 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हम आ जाए करें। तो कभी कभार थोड़ा सा इंटरनेट भी एक धोखा दे देता है, और कभी कभी थोड़ी सी फैमिली कमिटमेंट्स भी आ जाती हैं, लेकिन इसको ज़रूर हम कंसिस्टेंट करेंगे, ये हमारे जेन में भी है। अब मसला ये भी हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होने हैं, तो आपको पता है कि और टाइमिंग्स पे मैचेस हो रहे हैं, तो अब उस पर भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैचेस को किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं बेहतर। तो आपको इंशाल्लाह अपडेट देते
बिल्कुल
रहेंगे, सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहें। अच्छा इसमें अब जीशान ने
बिल्कुल,
यार बड़ा एक
क्या कह रहे हैं?
बोला कि प्लीज कमेंट ऑन मिडिल ऑर्डर एज आई थिंक इट हैज इम्प्रूव्ड एंड लुक्ड मोर रिस्पॉन्सिबल इन द ट्राई सीरीज। नवाज हैज रियली स्टेप्ड अप बाय बैटिंग ऑन फोर्थ पोजिशन एंड दे कैन ओकेजनली यूज शादाब। ठीक है, अब उमेर साहब इसी मौके पे मैं कहता हूं कि शिफ्ट मार देते हैं जीशान साहब के सवाल के ऊपर टॉपिक को, और हम चलते हैं
ठीक हो गया,
पाकिस्तान की तरफ। मैं कहता हूं कि
सही
पहले
है।
पिछले एपिसोड में हमने स्कॉर तो बता ही दिया था, लेकिन एक दफा दिखा भी देते हैं और रिपीट कर देते हैं, ताकि जब हम ये मिडिल
बिल्कुल
ऑर्डर पे आए ना तो एक अच्छी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। क्या कहते हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है,
तो
हाँ
ये जी
बिल्कुल
स्क्वाड है पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का है, ये हमने एक पहली एपिसोड में भी बता दिया था, लेकिन अब आप देख भी सकते हैं, और जो लोग हमें गूगल पे, एप्पल पे, स्पॉटिफाई पे सुन रहे होंगे उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जी बाबर आजम आपके कप्तान हैं, शदाब वाइस कप्तान है, हारिस रऊफ हैं, रिजवान कीपर हैं, नवाज, शाहीन आफरीदी की वापसी होती है, इफ्तखार अहमद हैं, वसीम जूनियर हैं, आसिफ अली हैं, खुशदिल शाह हैं, जिन पे मैं ज़रूर उमेर से बात करना चाहूँगा कि उमेर
बिल्कुल
साहब क्या ख्याल है, मोहम्मद हसनैन हैं, शान मसूद हैं, इन पे भी थोड़ी बहस हो सकती है, हैदर अली, नसीम शाह, फ़खर जमान, रिजर्व में से आ गए मेन स्क्वाड में, उस्मान कादिर मेन स्क्वाड से रिजर्व में चले गए, दहानी और हारिस। अब उमेर साहब ये स्क्वाड है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले तो पॉइंट इस पे मैं मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, ज़ीशान ने बोला कि नवाज और शदाब को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हम भी काफी अरसे से बोल रहे हैं उनसे बेहतरी महसूस हुई है। तो जब आप वो कर रहे हो तो फिर ये खुशदिल शाह की इंक्लूजन मेन स्क्वाड में खास तौर पे क्या आपको जस्टिफाइड लगती है?
यार खुशदिल शाह की जो इंक्लूजन है उससे तो वही बात है कि मैं तो इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ये खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस पे, उस तरह परफॉर्म नहीं किया। अब ये शुक्र है कि खुशदिल शाह जो खुशदिल शाह है वो प्लेइंग 11 से स्क्वाड पे चले गए, चले गए 15 प्लेयर्स पे। अब इनका जो मुझे लगता है ना, इनका जो मुझे ये लगता है जो इनको टीम में रखा हुआ है ये के देखे, ये एज अ स्लॉगर अगर हैदर अली लेट्स सपोज इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वाले केस में मेरे ख्याल में खुशदिल आ सकते हैं। और दूसरा केस ये के अगर हमारे मोहम्मद रिजवान जो है अगर कीपिंग में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस है रिजर्व में, ठीक है, तो खुशदिल शाह हो सकता है उसकी जगह कीपिंग कर ले। मतलब ये दो फायदे मुझे नजर आ रहे हैं खुशदिल शाह के, उसके अलावा कोई इनका रोल उस तरह मुझे नहीं नजर आ रहा प्लेइंग 11 में।
यार ये आपने बात अच्छी की है, क्योंकि मोहम्मद वसीम से भी जो चीफ सेलेक्टर हैं उनसे सवाल पूछा था कि अगर आपके स्क्वाड में रिजवान को कोई मसला होता है तो मोहम्मद हारिस तो तब तक विकेट कीपिंग नहीं कर सकेगा जब तक रिजवान बाहर नहीं होता वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। तो उन्होंने बोला था खुशदिल शाह विकेट कीपिंग कर चुका हुआ है, तो शायद मतलब, लेकिन मैं फिर भी आर्गुमेंट होगा कि आप मोहम्मद हारिस को मेन स्क्वाड में डाल सकते थे क्योंकि आपके पास शान मसूद और फखर जमान में से भी एक ऑप्शन आपके पास पड़ी होगी एज अ बैटर की, ठीक है। चलो ये तो एक आर्गुमेंट हो गया, बहस होती रहती है। अच्छा अब दूसरी बात उमेर ये है कि हमने ये देखा स्टैट, हम एक देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्पिनर्स की इकॉनमी है, इवन दो वो डेथ ओवर्स में ऑब्वियसली उस तरह नहीं कराते बॉल जैसा पेसर्स कराते हैं, लेकिन इकॉनमी ओवरऑल उनकी पेसर्स से खासी कम है, खासतौर पर जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है मेलबर्न के अंदर, सही है, वहाँ पे स्पिनर्स की इकॉनमी काफ़ी कम है। तो उसमें आप देखो कि आपके पास कोई बैकअप स्पिनर मेन स्क्वाड में नहीं है, खुदा ना खास्ता शदाब या नवाज को कुछ होता है, तो क्या ऑप्शन है फिर आपके पास?
यार हमारे पास सही बात है कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये बड़ा अच्छा फैक्ट आपने शेयर किया था वो जो ट्वीट थी उनकी, मैं बड़ा थोड़ा सरप्राइज हुआ था ये वाली ट्वीट देख के जलाल, क्योंकि मेरी एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फास्ट बॉलर ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन वही बात है जब हम डेटा को देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि स्पिनर्स जो है वो ज्यादा मतलब थोड़ी इकोनॉमी वाइज बेहतर है। और जो आपका सवाल है कि हमारे पास कोई बैकअप स्पिनर उस तरह नहीं है, तो ये एक अलार्मिंग है क्योंकि उस्मान कादिर का हालात उसकी तो इंजरी हुई भी है, तो ये एक सिचुएशन है कि शादाब नवाज और इफ्तिखार ही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि खुशदिल को भी उस तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको तो वो चांस ही नहीं दिया ना एशिया कप से लेके अगले मैचेस में भी कहीं पे उसे बॉलिंग नहीं कराई गई, तो मेरे ख्याल में कोई बैकअप नहीं है हमारे पास स्पिनर का, तो ये मेरा पॉइंट है। आप क्या कहते हैं इस पे?
यार मुझे भी नहीं समझ आई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही बात है, अब इमाद वसीम की जब भी सवाल होता है उनसे, मोहम्मद वसीम से जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वो कभी भी एक कन्विंसिंग जवाब नहीं देते, बात एंड में वही आती है शायद एटीट्यूड की वजह से बाहर हैं, मतलब मेरी नज़र में वो बैकअप स्पिनर के तौर पे खेल सकते थे और काइंड ऑफ क्वाइट लाइक बाय लाइक ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो मैं तो मेरा तो वोट उनकी तरफ ही था, लेकिन आई डोंट नो कि क्या थिंकिंग है इसके पीछे, शायद वही वाली बात है कि बाबर आजम बैक करना चाहता है तो वो बैक कर रहा है अपने इन प्लेयर्स को, विच इज फाइन, ठीक है। अच्छा अब उमेर साहब अब मेरा आपसे
नहीं नहीं अगले सवाल पे जाने से पहले एक और सवाल आपसे कि देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन खुशदिल शाह ने भी अच्छा नहीं किया ना उसको, देखिए हम लोग पहले बात करते थे कि आखिर में भेजेंगे वहां पे इशू करता है, लेकिन उसको काफी चांसेस मिले ऊपर आके खेलने के ना, तो वहां पे भी वो नहीं खेल सके।
तो नहीं चले आगे, ये दो ही जो है ना मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, खुशदिल शाह और उस्मान कादिर, और दूसरा तीसरा ये कह सकते हो कि मोहम्मद हारिस को शायद मेन स्क्वाड में होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ रिजर्व, इवन दो उनको हमने इतने चांसेस नहीं दिए, लेकिन रिजवान की विकेट कीपिंग में अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो फिर बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा, बोझ आ जाएगा। अच्छा उमेर साहब आगे जाने से पहले मैं कहता हूँ थोड़े से कॉमेंट्स दोबारा लेते हैं, फिर हम ना पॉसिबल 11 जो एक्सपेक्टेड 11 पाकिस्तान की है जो इंडिया के मैच की होगी उस पर हम जरा रोशनी डालते हैं। इतनी देर में हम ये लेते हैं गौरव चौधरी साहब कहते हैं इंडिया की
अच्छा
बॉलिंग
इसमें
कमजोर प्रिडिक्ट करना इंडिया के लिए अच्छा है, मतलब वो शायद कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग को काइंड ऑफ लाइक समझा जा रहा है कि कमजोर है, तो उनके ऊपर प्रेशर शायद कम होगा, मैं इस तरीके से समझा उसको, तो वो उनके लिए अच्छा ही साबित होगा। क्या कहते हो आप इस पे उमेर?
यार अच्छा साबित होगा, पता नहीं
प्रेशर
क्योंकि
कम
मैं
होगा।
जो अभी तक जो भी प्रेशर, हाँ उस हिसाब से कम यार, लेकिन बॉलिंग में तो कभी उस तरह प्रेशर उस तरह नहीं होता। मतलब जैसे अगर हम बैटिंग से कंपेयर करें, मतलब ज्यादा इंडियंस की, इवन हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बैटिंग उनकी ज्यादा फिट है, क्या कहते हैं?
हाँ नहीं, बैटिंग इंडिया की तो बैटिंग से हमेशा ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर ऑफ लेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया को लेट डाउन बड़े मैचों में उनकी बैटिंग नहीं किया है, तो वो ऐसा टोटल होता ही नहीं कि उनकी बॉलिंग उसको डिफेंड कर सके, ये बात तो ठीक है।
डिफेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी यार वही कंसर्न है इंडिया के जो डेथ ओवर्स हैं, वही अभी तक कंसर्न मुझे लग रहा है, क्योंकि शुरू के तो बॉलर्स हमारे ये हर्षदीप वगैरह, कुमार वगैरह, शामी, ये तो कर लेंगे अच्छे, लेकिन जो आखिरी ओवर्स हैं वो तो अभी तक गैप है मेरे ख्याल में, वो गैप अभी तक मुझे फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
हाँ अभी आज रोहित का बयान तो आया है कि शामी जो है बड़ी अच्छी प्रोग्रेस उसकी चल रही है, देखते हैं अब शामी किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं। वुडू पाक कहते हैं कल कितने मैचेस रख दिए हैं भाई, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कौन कौन से मैच देखें कौन से ना देखें। भाई हम तो पाकिस्तान और इंग्लैंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो वार्म अप है बेशक, लेकिन है पाकिस्तान तो उस
बाकी
पर।
जलाल वो भी आप बताएं कि आप कल वो प्लान करें वॉच अलोंग आने का,
यार मैं
मॉर्निंग
प्लान
में
कर रहा हूँ और
वो
सोशल
उसका कैसे?
मीडिया पे इसी वजह से हमारी ज़रा आप लोग ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, ताकि अगर हम रात, मेरा असल में मैं यूएस में बैठा हूँ तो मेरे रात के 1 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड का वार्म अप मैच स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है
क्या
मेरे
बात
लिए, लेकिन आपको कंफर्म हम कर देंगे 2-3 घंटे पहले कि
ठीक है
हम
ठीक
वॉच अलोंग के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उमेर तो शायद ऑफिस में होंगे लेकिन मैं अवेलेबल हूँगा, तो वो भी हम बता देंगे आपको। तो अच्छा उमेर साहब और कौन सा है, वुडू पाक का हो गया, मोहम्मद साद इमरान कहते हैं वुड यू लाइक टू सी शाहीन प्ले टुमारो और डायरेक्टली अगेंस्ट इंडिया? नहीं सर बिल्कुल, कल खेलेंगे वो
कल
मैच
देखना चाहेंगे, कल खेलना
कल,
चाहिए भी है यार, क्योंकि हाई प्रेशर मैच से पहले इस तरह का वार्म अप बड़ा जरूरी है, खास तौर
बिल्कुल
पे
वार्म अप
इंजरी के
जरूरी
बाद।
है। शाहीन ने
मैं
खुद
तो
भी
चाह
कहा
रहा था
था
फखर भी, अच्छा कहा था उन्होंने, वो क्या कहते
हाँ
हैं,
कि वो वार्म अप मैच
क्या
खेलना
कहते
चाहते हैं पहले इंडिया के मैच से पहले।
हैं? अच्छा मैं तो कहते, अच्छा सही, अच्छा मैं कह रहा था जलाल कि फखर जमान भी अगर फिट हो जाते तो वो भी खेलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े बायस नजर आ रही है मैनेजमेंट टीम फखर की तरफ, तो अगर उसको
हाँ
अगर हाई जो हाई प्रेशर गेम में एकदम डाल देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा इश्यू हो सकता है।
देखो अभी तक खबरें ये हैं कि शाहीन फिट है और शाहीन कल के लिए अवेलेबल है, लेकिन फखर कल के लिए अवेलेबल नहीं है,
अच्छा
तो वो अभी तक फुली रिकवर नहीं
हाँ
हुए, तो कल शायद शान
सही
ही
सही
खेलेंगे तीसरे पे। अच्छा गौरव चौधरी साहब कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर इकोनमी अबव 8, रिस्ट स्पिनर 7 एंड फिंगर स्पिनर 6-7 है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर इफेक्ट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे सर, बहुत
बिल्कुल,
अच्छा आपका पॉइंट है, और आपने स्टैट्स भी उमेर वही वाले दिए हैं ऑलमोस्ट जो आपने मुझे बताए थे, तो बिल्कुल गौरव चौधरी साहब ना अपनी वर्किंग पूरी करते हैं।
नहीं नहीं यार अच्छा है, इस तरह की वर्किंग बड़ी जरूरी होती है, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है, कुछ
बिल्कुल
चीजें वैलिडेट हो जाती हैं, क्या कहते हैं?
बिल्कुल सर। अच्छा इंडिया का भी कल वार्म अप मैच है, एक्साइटेड टू सी हाउ शाहीन एंड शमी फेयर इन द वार्म अप गेम टुमारो, SS90। इंडिया का वार्म अप मैच किसके साथ है भाई?
अभी देख लेते हैं जलाल
अच्छा
साहब।
ऑस्ट्रेलिया के साथ है।
अच्छा ये मजे का होगा यार, खैर पाकिस्तान वाला तो
अच्छा
वो भी मजे का होगा।
ओके 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 ओके, तो ये ऊपर किसने कमेंट किया था, वुडू पाक भाई, वुडू पाक भाई एक मैच और का इजाफा हो गया।
अच्छा
अच्छा जी ANZ कहते हैं बांग्लादेश हैज द लीस्ट विन परसेंटेज ऑफ ऑल टीम्स, डू यू थिंक दे आर एंटरिंग दिस वर्ल्ड कप एज एन अंडरडॉग एंड दे हैव नेवर वन एनी मैच इन द सुपर 12 ऑफ द T20 वर्ल्ड कप एक्सेप्ट इन 2007? यार वो हर वर्ल्ड कप में इसी तरीके से ही एंटर होते हैं, अभी जब से हम पैदा हुए हैं हमने बांग्लादेश को खैर इम्प्रूव तो बहुत किया है, जब तमीम, महमूदुल्ला, शकीब, मुशफिकुर रहीम ये
मोहम्मद
सारे थे, तो वो वाला जो 2-3 साल
अशरफुल,
थे अशरफुल,
वो
हाँ
बड़ा
वो
अच्छा एंकर
बड़े
थे
अच्छे
उसके
टाइम
लिए
थे,
यार।
लेकिन
इनका एक फास्ट
मसला
बॉलर
है
भी था, तापिश नाम था उसका, याद है आपको? तापिश बाशपक किस तरह करके नाम था, बड़ा अच्छा बॉलर था वो।
हाँ इस तरह करके को था तो सही, कोई बड़ा मुश्किल सा नाम था
हाँ ना।
लेकिन अभी तो रूबल अच्छा हुसैन थे, अभी तो इनके पास बॉलर अच्छे आ गए यार, अभी तो मुस्तफिजुर अच्छा है। रूबल हुसैन तो खैर अब शायद नहीं खेल रहे, लेकिन वो पहले उनका काफ़ी अच्छे, उनकी बॉल रिवर्स स्विंग भी होती थी, पेस भी अच्छी थी उनकी। तो प्लेयर्स तो ये इसी तरह
बिल्कुल
हैं। अच्छा ये तो आपने दोबारा कर दिया ना, वही वाला कमेंट है। बिल्कुल सर, बांग्लादेश
लेकिन इनकी बात
डेंजरस टीम
सही
तो
है ना,
है।
इनकी बात सही। हाँ मतलब कि इतना सीन ऑन नहीं है बांग्लादेश का। इवन यार वो उन्होंने भी तो यही बात की थी ना, शाकिब अल हसन थे मैनेजमेंट से, उनके कोच थे, कह रहे थे कि अभी टाइम लगेगा थोड़ा, हम लोग कुछ सोच रहे, कुछ इस तरह के भी इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी सी बात की थी,
यार उन्होंने बोला था
मैंने
कि हमें
पता नहीं
इम्पैक्ट
क्या नाम
प्लेयर
कौन
चाहिए,
सा था।
हमें
शायद
दस
वो
गेंदों पे
वेनजेट थे,
20 रन
बताऊंगा
25 रन करने वाले प्लेयर चाहिए, हमें
कॉन्ट्रोवर्सी।
वो वाले प्लेयर नहीं चाहिए जो 30 गेंदों पे 40 रन करके दें या 40 पे 50 करके दें, वो वाले प्लेयर नहीं चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, गौरव चौधरी साहब कह रहे हैं इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। यार ये तो बहुत मैचेस हैं उमेर साहब।
जुराज साहब मैं तो कहता हूँ कि
ये तो
बस
नींदे
आप
हराम होने वाले
कॉफी
मैच है भाई।
पकड़े या रेडबुल पकड़े और बैठ क्या कहते हैं
यार बेस्ट तरीका यही है बंदा ऑस्ट्रेलिया जाके कर कवर करे मैच को, क्योंकि अदरवाइज तो आपकी नींद ही नहीं पूरी होगी। कहते हैं कि जी मैंने इस पैक नहीं किया था कि नमीबिया श्रीलंका को हरा देगा। बिल्कुल सर, एक्सपेक्ट तो कोई भी नहीं कर रहा था कि नमीबिया श्रीलंका को हरा देगा, लेकिन हरा दिया है तो ये बात तो हो गई है। अच्छा उमेर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही, क्योंकि आपका इंटरनेट थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा हुआ है
यार।
हेजी हेजी।
हाँ हाँ नहीं, डिस्टॉर्ट हो रहा है मुझे। अब आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है। अच्छा अब ये कमेंट्स तो मैंने ले लिए जितने आए हुए थे उमेर साहब, अब ज़रा एक्सपेक्टेड 11 पे चलते हैं जो पाकिस्तान अपने बड़े मुकाबले में इंडिया के खिलाफ डाल सकता है, वो क्या होगी?
ठीक है ठीक
वो जी ये आ गई
है,
आपकी स्क्रीन के ऊपर, पॉसिबल
अच्छा
11 है। इसमें
है,
ऑब्वियसली
सही है
बाबर रिजवान तो आपके ओपनर ही हैं, लेकिन तीसरा नंबर अभी उमेर
ट्रिकी
साहब इन कंटेंशन है,
है।
ट्रिकी है कि फखर अगर फिट हुए तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि टीम की बायसनेस, जिसने आपने आपने कहा कि वो फखर की तरफ ज्यादा है, क्योंकि इसी वजह से शायद मेन स्क्वाड में डाला है, क्योंकि वो फखर को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते हैं शान से ऊपर। तो अगर फखर फिट होते हैं तो फखर 3 पे खेलते हैं, अदरवाइज शान खेलते हैं। अच्छा अब इसके आगे बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो सकता है बेस्ड ऑन सिनेरियो, या बेस्ड ऑन जो बॉलर लगा है, लेग स्पिनर लगा है, ऑफ स्पिनर लगा है, शादाब नवाज में से कोई भी ऊपर आ सकता है, लेकिन चौथे पांचवें छठे पे आपको नवाज, हैदर और शादाब में से ही कोई नजर आता दिखाई देता है, और सातवें और आठवें पे इफ्तखार और आसिफ अली, और फिर आपके 3 पेसर्स हैं नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। तो ये जी आपकी लग रही है प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान खिलाएगा। अच्छा SS98 साहब हमें याद करा रहे हैं तपाश पायसा, हाँ यही है, इसी तरह करके कोई नाम था।
या
बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का नाम है।
बिल्कुल।
बिल्कुल देख ले यार, हमारी थोड़ी सी मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा वो जलाल, इसमें जो है हमारी जो पॉसिबल पे अगर हम बात करें, इसपे 6 पे शादाब को रखा हुआ है। मेरे ख्याल में ये थोड़ा कंडीशनल हो जाएगा। नहीं, मेरी आवाज आ रही है
हाँ
आपको?
चौथे से छठे नंबर कंडीशनल है, बिल्कुल आ रही
है
है
ना,
आपकी आवाज।
कंडीशनल हो जाएगा। जी, कंडीशनल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह न्यूजीलैंड वाले फाइनल पे भी जो भी हुआ है उस पे भी देखा कि जब कम ओवर रह गए तो फिर इफ्तिखार आ गया, अगर ज्यादा ओवर होंगे तो फिर शायद शादाब को लेके आए। क्योंकि आप भी बात कर रहे थे कल, आपने बताया भी था कि PSL में भी इफ्तिखार का ज्यादा रोल फिनिशर वाला है, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना एक डायनामिक रखना पड़ेगा इनको। बाकी उसके अलावा ये पॉसिबल है, लेकिन हमारी आइडियल आपको पता है कुछ और है।
हमारी आइडियल कुछ और है सर, उससे पहले हम मोहम्मद साद इमरान की आइडियल पे ज़रा कोशिश करता हूँ मैं, कमेंट इसी स्क्रीन पे आ जाए, लेट्स सी। पहले कभी ट्राई नहीं किया स्क्रीन पे लाने का, लेकिन लेट्स सी आ गया जी। मोहम्मद साद इमरान कहते हैं बाबर रिजवान, शान मसूद, इफ्तखार, आसिफ, हैदर, शादाब, नवाज, नसीम, शाहीन, हारे। तो टीम उनकी भी वही है, बस वो डिफरेंस ये कर रहे हैं कि वो इफ्तखार और आसिफ को ऊपर भेज रहे हैं
अच्छा
नवाज और शादाब की।
यार ये साद भाई, मुझे इस पे एक चीज लग रही है, ये तो वही वाली लाइनअप है ऑलमोस्ट। अगर हम आसिफ को अगर निकाल दें, आसिफ को मतलब आसिफ को आप आसिफ को बाद में ले जाएं, हैदर को पहले ले आए, ये तो वही ऑलमोस्ट लाइनअप है जो एशिया कप में हम देख रहे थे और इंग्लैंड वाली सीरीज में,
बैटिंग ऑर्डर
है ना,
वही है शाहीन का,
बैटिंग
बस
ऑर्डर
इनकी प्लेइंग इलेवन हमारे वाली है उमेर, बस फर्क ये है कि बैटिंग ऑर्डर का
मतलब
मस
लाइनअप,
डिफरेंस
हाँ
है।
बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा है।
अच्छा, अब इसमें साद साहब के इसमें बात सारी ये है कि आपके जो है ना मैचेस के अगर स्टैट्स देखें, 7 मैचों में पाकिस्तान ने शादाब और नवाज को ऊपर भेजा, चौथे और पांचवें नंबर पे। उन 7 में से 5 मैच पाकिस्तान जीता है, ठीक है। वेर एज अगर आप वो वाला निकालें कि इफ्तखार वगैरह जब ऊपर बैटिंग किए हैं तो उसमें रिजल्ट काफी बुरे हैं पाकिस्तान के, तो इस वजह से शदाब और नवाज स्टैट्स ये बता रहे हैं कि उनको ऊपर भेजना चाहिए चौथे पांचवें नंबर पर, या हद हो गया 6 नंबर पर, तो इसलिए पाकिस्तान लास्ट इन कुछ मैचेस में इस तरह गया। अच्छा, ये कहते हैं गौरव चौधरी साहब, रिजवान शान या फखर ओपनर, बाबर हैदर नवाज शदाब इफी आसिफ। रिजवान शान या फखर, सर गौरव चौधरी साहब अब
रिजवान,
नहीं ये हो सकता
अब
अब
तो नहीं हो सकता,
ओपनर नहीं चेंज हो सकता पाकिस्तान के, अनलेस और अनटिल कोई इंजर्ड हो जाए। तो
बिल्कुल।
बात
अच्छा
आपकी
जलाल,
ठीक
मेरा
है।
सवाल है आपसे, मेरा सवाल है आपसे कि मैं कि अगर लेट्स सपोज फखर ठीक हो जाता है, ठीक है, तो आप फखर को कहाँ पे देखते हैं, वन डाउन देख रहे हैं उसको?
यार फखर का ना एक वन डाउन ही बनता है, ठीक है, वन डाउन ही बनता है
बिल्कुल
फखर। एक और आइडियल सिनेरियो हो सकता है जो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, बल्कि वो मैं दिखा देता हूँ। आइडियल इलेवन अगर टीम हो जो हम लोग कह रहे थे, उसमें एक ही तब्दीली हो, मैं उसमें दो भी कर सकते हैं। एक
अच्छा
तब्दीली तो ये है सिंपल कि हमने देखा कि पिछली जो पाकिस्तान अपनी एक्सपेक्टेड इलेवन खिला रहा है उसमें 8वें नंबर पे आसिफ अली आ रहे थे, ठीक है। अब
ठीक
आठवें
है,
नंबर
सही
पे
है,
आसिफ अली के आने का क्या फायदा है
कोई
क्या नहीं
सेंस
है,
नहीं, नहीं
ठीक है।
नहीं है।
तो उसकी जगह बेहतर नहीं होगा कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लें ताकि हमें एक
अच्छा
बॉलिंग
सही है,
ऑप्शन भी मिल जाए और वसीम जूनियर स्लाइटली बैटिंग भी कर लेता है। ऑब्वियसली उस तरह की हिटिंग नहीं है जैसे आसिफ की है, लेकिन आसिफ से भी हमें वो रिजल्ट्स तो उस तरह नहीं कंसिस्टेंटली मिलते। तो हम एक डिपार्टमेंट में पूरा स्ट्रांग क्यों ना कर लें कि लीथल डिपार्टमेंट हो जाए हमारा।
यार नहीं बिल्कुल लीथल हो, हमारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो यू ही लीथल हो सकता है कि अगर हम 4 पेसर्स खिला लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी ऑप्शन है कि आसिफ अली की जगह मोहम्मद वसीम को खिला रहे। पहले अगर न्यूजीलैंड वाला मैच में अगर लेट्स सपोज हैदर अली परफॉर्म ना करते ना, तो फिर मैं कहता है कि हैदर अली की जगह आप ले आए वसीम को। लेकिन हैदर अली ने क्योंकि उसने छोटे सैंपल सेट पे एक अपनी इनिंग शो कर दी है, तो मेरे ख्याल में आपने मतलब सही किया कि आसिफ अली की जगह वसीम को ले आए, तो
नहीं,
मैं इससे मतलब सेटिस्फाई हूँ। और दूसरी बात, आप जो डेप्थ की बात कर रहे थे, डेप्थ की सॉरी पाकिस्तान बैटिंग की, वो जाहिर है जब नवाज ऊपर आ रहे तो उसके बाद ऑलरेडी हमारी बैटिंग लाइनअप की डेप्थ वैसी बढ़ रही है, तो वो उस तरह से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
यार अब ये देखो ट्रिकी मामला है, जैसा मोहम्मद समीर साहब कह रहे हैं कि भाई आसिफ कभी भी चल सकता है। यार बिल्कुल कभी भी चल सकता है, और हम मानते हैं कि आसिफ की जो हिटिंग कैपेबिलिटी है एबिलिटी है वो पूरे जो टीम में सबसे ज़्यादा ही है शायद, क्लीन हिटिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी बैटिंग ना यूटिलाइज होती है उस तरीके से, वो बहुत लेट आते हैं और जब जल्दी आए तो वो उस तरह की बैटिंग करते नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक पूरा नंबर वेस्ट जाता है। पूरी दुनिया की अगर आप टीम उठा के देखो ना, 8वें 7वें 8वें नंबर पे ऑलराउंडर्स खेलते हैं, सही। कोई ऐसा ऑलराउंडर होगा जो बैटिंग ऑलराउंडर होगा, कोई ऐसा ऑलराउंडर होगा जो बॉलिंग ऑलराउंडर होगा। इस वजह से आसिफ कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस खराब करते हैं। इफ्तखार को प्रेफरेंस इस वजह से मिल जाती है क्योंकि इफ्तखार बॉलिंग कर लेते हैं। और अब उमेर एक और आर्ग्यूमेंट बनता है कि पहले इफ्तखार ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो हमें समझ आती थी कि चलो आसिफ को हम एज अ फिनिशर खिला रहे हैं। अब पाकिस्तान टीम इफ्तखार को एज अ फिनिशर खिलाने का सोच रही है, तो क्या अब आप दो फिनिशर खिलाते हो, वो अजीब सी बात थोड़ी सी हो जाएगी।
हाँ बिल्कुल यार, आपका फिनिशर जो कि मतलब जो रोल आसिफ का है, उस तरह का सिर्फ मतलब टीम में सिंगल बंदा होना, एक बंदा होना चाहिए वो वाले रोल का स्पेसिफिक। तो वो मेरे ख्याल में अगर हम अपनी टीम को देखें तो हमारे पास है हैदर, उसने परफॉर्म भी किया है, और बस इस पे मैं यही बोलूंगा, यही मेरा इस पे है।
हाँ समीर,
बाकी एक और बात आपने अच्छी की है कि इफ्तखार वाला जो रोल है वो हमने देखा एशिया कप में कुछ और था, और अब जो है आखिरी 2-3 मैचेस में वो थोड़ा सा चेंज हो गया, नीचे आ गया है वो, तो वो भी थोड़ा सा आसिफ के रोल को थोड़ा सा वो उसको कर रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बॉलर को।
हाँ, क्योंकि अब टेक्निकली पहले आसिफ सातवें पे आ रहा था, अब इफ्तिखार सातवें पे आ रहा है, आठवें पे एक सोल बैट्समैन खिलाना उसकी कोई सेंस नहीं बनती यार। देखो दिनेश कार्तिक को भी इंडिया आई थिंक सातवें पे ही खिलाता है, सही है,
बिल्कुल
तो वही मेरा ख्याल है वही नंबर बनता है, उससे नीचे आपके ऑलराउंडर्स या बॉलर्स ही होने चाहिए। अच्छा वुडू पाक साहब क्या कहते हैं, बाबर फखर रिजवान। अच्छा आप भाई ये देखो, चाहते हम भी थे क्या फखर ओपनिंग करे ये हो नहीं सकता मेरी जान, अब बाबर और रिजवान ही करेंगे,
बिल्कुल
तो
ऐसा
दिल को बहलाना है तो आप बहला लो जितना मर्जी बहलाना है, लेकिन होना यही है, बाकी टीम उनकी
होना
वही
ये
है,
बिल्कुल ऐसा ही।
हमारी आइडियल 11 वाली टीम
बाबर,
है उनकी भी।
फखर, रिजवान, नवाज, शादाब, हैदर। अच्छा ये नवाज और शादाब उस तरह ले आए, ठीक है। फिर हैदर आ गए, इफ्तखार आ गए, नसीम आ गए, ठीक है। वही उसी तरह का हिसाब है, ठीक
हाँ
है।
बस फखर से ओपनिंग कराई है, बाकी इनका काम सही है। अच्छा अब ये बाकी कमेंट्स भी मैं
बाकी
लेता हूँ, एक उमेर चेंज और हो सकता है इस टीम में, ठीक है, अब उस चेंज से होगा
क्या
ये कि वो काफी बड़ा चेंज हो जाएगा, उससे पाकिस्तान को काफी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह हमने पहले एपिसोड में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की टीम हर उस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करती है जिसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेरिमेंट करती है, 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान ने वन डाउन में आके बैटिंग की, वो पाकिस्तान जीता, 99 के वर्ल्ड कप में अब्दुल रजाक आए, 2009 के वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी वन डाउन आए, अब तीसरे नंबर पे हमने देखा है कि शान तो स्ट्रगल कर रहा है, फखर ने भी कोई उसकी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी स्ट्रगल ही कर रहा था, इसी जैसे वो टीम से सारे कह रहे थे उसको बाहर निकालो बाहर निकालो। अच्छा अब यहाँ पे एक कंटेंशन आ जाती है ना, शायद आप ये भी कर सकते हो, आप शान और फखर को प्लेइंग 11 में खिलाओ ही ना, ठीक है, आप प्रमोट करो शादाब
ठीक
खान को
है।
तीसरे नंबर पर, ठीक है, और आप आसिफ अली को खिला लो इंस्टेड ऑफ शान और फखर एट नंबर 7, क्या कहते हो, या नंबर 8 जो भी बनता है आपका।
यार आप कह रहे शदाब को वन डाउन खिला दे
शादाब वन डाउन खिला दो और शान और
यार,
फखर की
जैसे
जगह,
वो
शान की
हाँ
जगह बेसिकली
हाँ
इनमें से किसी एक की जगह पर आप आसिफ अली को ले आओ।
मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि वन डाउन शदाब आ जाए और शान फखर की जगह आसिफ आ जाए।
हाँ
वैसे अच्छी ये वाली सजेशन थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है इसपे, लेकिन इसपे मैं ये बोलूंगा जलाल, अगर शादाब वन डाउन आते हैं, प्लेयर तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक इशू हो सकता है। इशू ये हो सकता है कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स कर गया, जिस तरह बाबर और एकदम शादाब आउट हो गया, तो फिर हमारा मिडल ऑर्डर ना थोड़ा थोड़ा नहीं काफी प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि शादाब का एक रोल जो है ना वो काफी वाइटल रोल है। एज अ मतलब के जो भी खेल रहे होते मिडल ऑर्डर, उनको पता होता है कि नीचे शादाब है, तो वन डाउन आके थोड़ी रिस्क हो जाएगी, थोड़ी एग्रेशन हो जाएगी।
यार लेकिन अब मेरा इसमें एक
बाकी
आर्गुमेंट है, आप देखो
ये मेरा
लास्ट
पॉइंट है।
न्यूजीलैंड वाला फाइनल देखो, उसमें क्या हुआ कि शान तीसरा नंबर पाकिस्तान का एशिया कप से लेके अब तक नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है, वहां से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अगर आती भी है तो वो मैच विनिंग कॉज में नहीं आ रही, पिछले मैच में शदाब यूटिलाइज ही नहीं हुआ ना, आई थिंक न्यूजीलैंड वाला जो फाइनल था उसमें शान ने आके मैच फंसा दिया था, ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये है कि आपको तीसरे नंबर पे एक इन्फोर्सर चाहिए जो आए, और क्योंकि बाबर और रिजवान ज्यादा टाइम लेते हैं, तीसरा नंबर वाला भी आके अगर उसी तरह बैट करेगा, फखर को क्यों प्रेफरेंस की लोग बात कर रहे हैं शान के ऊपर, कि फखर से एक्सपेक्टेशन है कि वो आके मारेगा, लेकिन फखर तीसरे पे आके मारता नहीं है उसका रिकॉर्ड ये बताता है कि वो मारता नहीं, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, तो आप शदाब को तीसरे पे भेज के आसिफ को नीचे ऐड कर सकते हो, ये मेरा एक आर्गुमेंट हो सकता है, बाकी तो आई थिंक यही है। कमेंट लेते हैं भाई इधर।
हाँ नहीं इसपे मेरा वही पॉइंट है जलाल, मतलब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं मतलब वो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर शादाब ऊपर आएंगे ना वन डाउन, तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाएगा नीचे, अगर लेट्स सपोज दोनों आउट हो जाते हैं, वो भी कंडीशनल। अगर मैं इस तरह बात करूं कि अगर शुरू में आउट हो जाता है, लेट्स सपोज आपके बैट्समैन पहले मतलब 3-4 ओवर में आउट हो जाता है, तो उससे खैर थोड़ा है, खैर
नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन ये प्रेशर ऑन पेपर है, मैं यही कह रहा हूँ ये डिसीजन मुश्किल है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन ये वो आउट ऑफ द बॉक्स वाला है कि अगर आपका तीसरा नंबर भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है ना, तो फिर पाकिस्तान की बल्ले
हाँ
बल्ले हो जाएगी,
वैसी
ठीक है,
हो जाएगा
फिर
बिल्कुल।
वैसी टीम हो जाएगी,
बल्ले बल्ले, ये बात सही है, बल्ले बल्ले हो जाएगी।
SS98 कहते हैं कैन पाकिस्तान गो विद वसीम नसीम शाहीन एंड हारिस एंड ड्रॉप वन फ्रॉम हैदर आसिफ। बिल्कुल सर, हम भी यही बात कर रहे हैं। अब हैदर ने क्योंकि लास्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो वो बड़ी क्रूशल थी, अदरवाइज उन्होंने ही बाहर होना था। लेकिन अब लग रहा है कि आसिफ का ज़्यादा चांस है अगर आपने वसीम को खिलाना है। और उमैर एक बात ये है कि बाबर का बड़ा कॉन्फिडेंस है वसीम जूनियर के ऊपर,
हाँ
तो ये एक चीज है, हो सकती है कि बाबर शायद
हाँ ये
कंसिडर
चीज
कर
मैंने
रहा
भी
हो।
नोट की है, सही कह रहे हो। हाँ नहीं, ये चीज मैंने भी नोट की है। लेकिन यार जलाल, बाबर ज्यादा उसको एज अ थर्ड सीमर ही रख रहा है, ये भी मेरे वैसे लग रहा है मुझे, है
हाँ, आप
ना?
देखते हैं
उसको
वार्म
एज
अप
अ
में
फोर्थ
कुछ ट्राई
उस
करते
तरह
हैं कि
से
नहीं।
ऑप्शन नहीं। अब जो आपको याद होगा, आमिर जमाल जो मैच खेला था, एक तो पहला खेला था, फिर जो नहीं जो फोर्थ और फिफ्थ खेला था ना,
हाँ,
मतलब कि
फिफ्थ।
जो लास्ट उसने खेला था, उसमें उसमें बाबर ने दोनों को एज अ मेन सीमर्स खिलाया था, है ना?
हाँ, ये तो उस टाइम पे खैर हसनैन और नसीम अवेलेबल भी नहीं थे, बट हाँ दहानी और हारिस तो खेल ही सकते थे। लेकिन स्टिल अच्छा, ANZ कहते हैं मुझे लगता है बाबर और रिजवान को
तो मुझे ये लगता है
एटलीस्ट।
बाबर के शायद माइंड में उस तरह, मोहम्मद वसीम ने ये बात की थी, आपको याद होगा जब वो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बात की थी फोर्थ सीमर की, लेकिन बाबर के एंड से इस तरह नहीं सुनी अभी तक। खैर देखते हैं।
अच्छा, ANZ का कमेंट पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को एटलीस्ट 60 का पावर प्ले करना चाहिए, वरना वही 40-50 का पावर प्ले और फिर मैच बोरिंग हो जाएगा 150-160 वाला। यार बात तो ठीक है, लेकिन 60 ना भी करें 50 ही कर दें। 50 ही कर दें भाई, 40 तो कुछ ना कुछ करके हो ही जाते हैं। पता नहीं ये 40 पे क्यों हमारे टीम की उतना 40 का फिगर क्यों पसंद आ गया। गौरव साहब कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में रोज एनालिसिस होता है और ऑस्ट्रेलिया में आसिफ के आते ही शॉर्ट बॉल मिलेगी क्योंकि वो ओवर पिच को मारता है बस।
अब जलाल मजे की बात ये है ना, इन्होंने जलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है, मुझे लगता है आ रही है लेकिन लैग आ रहा है। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ कि आपकी आवाज़ आ रही है।
जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आपको?
बिल्कुल जी आ रही है।
अच्छा, लैग तो नहीं है?
अब बोले आप, लैग आ रहा है आई थिंक। आप अब बोले, मैं थोड़ा चुप होता
हाँ
हूँ।
हाँ मैं कह रहा था। अच्छा नहीं, वो इनका वो कमेंट पढ़ा तो जैसे ये कह रहे हैं कि 6P का पावर प्ले करना चाहिए, बात तो जेन्युइन है, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन अब वो जिस तरह जो सिनेरियो बन गए, क्योंकि पाकिस्तान ने 100 रन मार दिया आखिरी 10 ओवरों में, तो मेरे ख्याल में अब बाबर और रिजवान को और कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि 50 से कम भी अगर हम करें तो खैर
अरे यार, अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब हम जल्दी आउट भी हो गए तो नीचे हैं लड़के संभालने के लिए। वर्ल्ड कप क्रिकेट में रोज एनालिसिस होता है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये तो पढ़ लिया था। गौरव चौधरी साहब कह रहे थे कि जी आसिफ को शॉर्ट बॉल्स मारेंगे। तिराथ सिंह, तिराथ सिंह, अगर मैं आपका गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ सर, करेक्ट कर दीजिएगा। सर, इंडिया
हाँ
को देखते हैं, सूर्या के बारे में बताएं। बिल्कुल सर, सूर्या सर के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है पहले भी, कि सूर्या और रिजवान के बारे में शायद हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों में से नंबर वन, ट्रूली नंबर वन प्लेयर कौन सा है। तो उमैर ने एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट ये रेज किया था कि यार देखो, रिजवान का नो डाउट इनसेन कंसिस्टेंसी चल रही है टॉप ऑर्डर में, बट सूर्या मिडिल ऑर्डर में आके मैच विनिंग परफॉर्मेंस देना T20 में वो बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है सर, टॉप वर्ल्ड क्रिकेट का इस टाइम के ऊपर टॉप बैटर ही है। अच्छा, इसमें क्या है, SS98 साहब, द बेस्ट पाकिस्तानी 11, बाबर, रिजवान, फखर, नवाज, इफ्तिखार, शदाब, आसिफ, वसीम, शाहीन, हारिस और नसीम। अच्छा, इन्होंने हैदर को बाहर कर दिया। हैदर और आसिफ में से जो है ना वो ऑप्शन है। ठीक है, ये भी सही है, सही हो गया। वुडू पाक क्या कहते हैं, भाई PCB से बात करो, रिजवान बहुत स्लो मोशन में खेलता है, फखर से ओपन करवा लो। यार बड़ी बात की है सर, हमने बड़ी बात की है, बट हो नहीं रहा, या ना होना है, अब वर्ल्ड कप के बाद ही होना है जो होना है। जी गौरव चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं उमेर भाई से सहमत हूं, अगर ओपनर जल्दी आउट हो गए तो सिर्फ पावर हिटर बचेंगे, तो कहीं बैटिंग कोलैप्स ना कर जाए। बिल्कुल सर, ये बात भी जेन्युइन है, जेन्युइन बात है, इस पे कोई डाउट नहीं है। शादाब को तीसरे पे खिलाने की आप ये बात कर रहे हैं कि ये मसला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
जी
अच्छा,
आवाज आ रही है जलाल आपको मेरी? हेलो।
बिल्कुल आ रही है सर।
अच्छा वो ऊपर में एक देख रहा था कि वो बात कर रहे थे, गौरव बात कर रहे थे आसिफ अली के उसके ऊपर ना, बैटिंग के ऊपर एनालिसिस पे, तो उस पे वो बात याद रही आपको? याद है जलाल, हम ये बात हमने भी की थी कि आसिफ स्पिनर को नहीं खेल सकता, तो एक वो भी उसका फैक्ट है। मतलब कि ना जो मतलब जो सबको पता है, तो हो सकता है वो भी एक थोड़ा क्रिटिकल हो जाए उसकी उसकी सिलेक्शन पे, है ना?
बिल्कुल हो सकता है। और ये आपने बहुत प्यारा पॉइंट रेज किया, कल बैठ के मैं स्टैट्स देख रहा था कि जो जबरदस्त काम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया वो क्या किया, कि हैदर अली स्पिनर्स को के बेहतर स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स के खिलाफ उसका, ठीक है। वो एग्जैक्ट फिगर्स मैं मुझे याद नहीं रहा कि मैं यहाँ
अच्छा
पे लिख
सही
लेता,
सही
स्पिनर्स के अगेंस्ट हैदर का ना पेसर्स से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। ऑन दी अदर हैंड इफ्तिखार का पेसर पे ज़्यादा
सही
स्ट्राइक रेट है, स्पिनर्स पे कम है। तो पाकिस्तान ने हैदर को उस टाइम पे भेजा जब स्पिनर्स लगे हुए थे, और इफ्तिखार को उस टाइम पे भेजा जब पेसर लगे हुए थे। तो शायद आसिफ के साथ भी अगर यूटिलाइज करना है तो उसको सिचुएशन के हिसाब से भेजना पड़ेगा, तो बेहतरीन हिसाब हो जाएगा।
बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं सही कह रहे हैं।
अच्छा, मिस्टर गैम्बलर कह रहे हैं कि व्हाट इफ वाली बात है कि रिजवान इंजरी हो तो माय प्लेइंग इलेवन वुड बी बाबर, फखर, शान, हैदर, नवाज, कीपर बेटर,
अच्छा
खुशदिल,
नवाज,
इफ्ती और आसिफ। इफ्ती और आसिफ में से उन्होंने चॉइस दी है, शदाब, शाहीन, नसीम और राउफ। मतलब कीपर बेटर तो सिर्फ मोहम्मद हारिस ही है, और वो भी मसला ये टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं, तो खुश।
लेकिन वो इनकी लाइनअप पे जलाल एक चीज हो रही है जो मिस्टर गैम्बलर भाई आपकी जो खुशदिल को खिला रहे ना कीपर बैटर,
नहीं, खुशदिल
देखिए
को नहीं, ये
अगर ये
कीपर बैटर
मैच से
खिला रहे हैं, ये
पहले,
खुशदिल को सेपरेटली खिला रहे हैं। 5 6 7
सेपरेट
आठ
है
नौ
फिर
दस
सही।
ग्यारह हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है मिस्टर गैम्बलर्स भाई, अगर आपने करना है ना तो खुशदिल और आसिफ में से ऑप्शन आपको लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इफ्ती और आसिफ, क्योंकि इफ्ती आपको बॉलिंग में ऑप्शन दे देता है, तो आसिफ और खुशदिल में से एक को होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये मेरे राय है। तीरथ सिंह कह रहे हैं इंडिया के बारे में कुछ बात करो सर, इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं सर, ये जो टीम हम खिलाने लगे हैं इंडिया के अगेंस्ट खिलाने लगे पाकिस्तान की ये वो टीम है जो इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी, हमारी अगर हम हो तो हम हमारी आइडियल ये बनती है, लेकिन पॉसिबल इलेवन ये है।
अच्छा एक और जलाल मैं देख रहा था ESPN क्रिक इन्फो, तो उसपे विनिंग प्रोबेबिलिटी पता है कितनी आ रही है पाकिस्तान की? आप वो गेस करें जरा कि पाकिस्तान इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी में कितना क्या होगी पाकिस्तान की और इंडिया की?
यार ये इसका मुझे ना आइडिया है, क्योंकि ये मैंने भी देख लिया था,
अच्छा
ये है
देख
तकरीबन पाकिस्तान के 37% चांसेस दे रहे हैं भाई जीतने के इंडिया के खिलाफ, और इंडिया
ऐसा
के
ही है। हाँ
63% चांस है इंडिया का जीतने का,
63
ठीक है।
परसेंट चांस है। हाँ और ये वाला चांस थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर बारिश हो गई,
अब ये
अगर
बात आपने
मेलबर्न
कर
में,
दी
क्योंकि हम देख रहे हैं
खतरनाक बात आपने
ना,
कर
हम लोग
दी,
देख रहे हैं भाई हम देख रहे हैं भाई कि मेलबर्न में हालात थोड़े खराब हो रहे हैं, बारिश वाली सिचुएशन बन सकती है, अल्लाह करे ना बने। हम चाहते हैं कि पूरा मैच हो 20 ओवरों का, लेकिन अगर नहीं होता तो वही बात है, 12 ओवर या अगर 15 ओवर होते हैं तो फिर इंडिया ज्यादा डोमिनेट कर सकता है।
इंडिया ज्यादा डोमिनेट करता है और फिर हमारी आइडियल इलेवन भी उमैर चेंज हो जाती है थोड़ी, फिर आसिफ अली वापस से अंदर आ जाते हैं मैच छोटा होगा तो आसिफ अली अंदर आ जाएंगे, आसिफ अली का ज्यादा रोल आ जाएगा, हिटर का ज्यादा, और कोई
हाँ
पता नहीं
फिर
है फिर
सही है
पाकिस्तान खुशदिल के साथ भी चांस ले ले, किसी ये शान की जगह खुशदिल को खिला ले।
लेकिन नहीं नहीं मैं आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल, लेकिन एक और बात बताएं कि क्या बाबर रिजवान फिर भी खेलेंगे, ऐसा मतलब कि टॉप ऑर्डर भी आएगा
यार बाबर और रिजवान, ऐसा ना हो 8 ओवरों वाले मैच में भी बाबर और रिजवान ओपनिंग पे आ रहे हैं।
यार सही बात है।
ये बैड हो जाएगा फिर मेरे अगर ये हो गया तो।
सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा।
अच्छा वैसे ऑडियंस से भी पूछते हैं यार, ये आपका क्या राय है भाई, आपको क्या लगता है जितनी बाबर और रिजवान अपनी ओपनिंग की पोजीशन नहीं छोड़ते, कि अगर मैच रिड्यूस होता है पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में, तो क्या लगता है आपको, फिर भी बाबर रिजवान ओपनिंग करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो किसको करनी चाहिए? ये वैसे बड़ा सवाल है यार।
बाकी आमिर भाई का कमेंट आया जलाल चैट पे, कह रहे हैं कि आई एग्री विद जलाल, आसिफ को पेसर्स के अगेंस्ट यूज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, बेहतरीन बात है।
अच्छा फॉर सम रीजन ना इधर स्ट्रीमिंग में ना कमेंट मेरे यहाँ पे रुक गए हैं, लेकिन नीचे कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं फॉर सम रीजन क्यों नहीं आ रहे कमेंट, कि मैं यहाँ पे ना ब्रॉडकास्ट कर सकूं उनको।
अच्छा बाकी जलाल ऊपर भी ANZ भाई पूछ रहे हैं आपसे, आप क्या जलाल प्रैंक्स देखते हैं?
क्यों मैं प्रैंकस्टर लगता हूँ आपको? वैसे मैं देखता हूँ यार, P4 पकाऊ बड़े शौक से देखता हूँ। अच्छा मैं भी इधर से फिर देखता हूँ, क्योंकि ये तो बाकी कमेंट्स थोड़े मिस हो गए हैं क्योंकि वहां पे शो नहीं हो रहे थे।
चले मैं बोलता रहता हूँ तब तक। उसके बाद एक और कमेंट है तिराज सिंह भाई का, कह रहे हैं 200 स्कोर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके बना सकता है, कुछ बताओ और, कुछ बताओ और।
यार पहले बैटिंग करते हुए तो मुश्किल ही लगता है 200 स्कोर बनाना पाकिस्तान का, चेजिंग में बना सकते हैं,
इंटेंट ही नहीं है ना पहली बैटिंग में, इंटेंट ही नहीं है। आपके बाबर रिजवान वो स्कोर सोचते हैं, वो सोचते हैं 6-7 ओवर निकालने, 8 ओवर
सोचते सोचते पावर प्ले निकल जाता है,
जब पाकिस्तान रन चेज कर रहा है तब थोड़ा इंटेंट नजर आता है कि हाँ ये भी है। अच्छा अगला कमेंट आया गौरव चौधरी का, बाबर और रिजवान करेगा शोर। हाँ यार ये भी है बिल्कुल। फिर आमिर भाई कह रहे हैं एज पर हिस्ट्री पाकिस्तान अपनी लाइनअप चेंज नहीं करता। हाँ चेंज नहीं करता, लेकिन आमिर भाई जब करता है तो फिर थोड़ा पाकिस्तान के हक में चीज चली जाती है, जिस तरह हमने देखा नवाज आ गया अभी इंडिया वाले मैच में भी, न्यूजीलैंड वाले में भी, और पहले जो आप बता रहे थे जलाल 92 पे इमरान खान आ गए थे,
हाँ।
और अब्दुल रजाक आ गए थे 99 में, तो इस तरह के कुछ चेंजेस आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए तो अच्छा है, हिस्ट्री चेंज हो जाए।
नहीं नहीं होनी जो चाहिए यार, क्योंकि तीसरा नंबर पाकिस्तान का बेसिकली कोई बैटर वहां पे बैटिंग नहीं कर रहा बोले जाया ही कर रहा है वहां पे आके।
यार मतलब आप अंदाजा लगाएं जलाल, देखें न्यूजीलैंड का वन डाउन आता है विलियमसन, ठीक है, इंडिया का वन डाउन आता है विराट कोहली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वन डाउन आता है मिचेल मार्श आ जाता है, ठीक है वो चेंजेस कर रहे हैं उस तरह, और इंग्लैंड का वन डाउन कौन आ रहा है आज?
इंग्लैंड का वन डाउन नहीं मुझे पता कि इस अभी इस सीरीज में कौन सा आया है, डेविड मलान आता है वैसे तो,
डेविड मलान आता है, तो मतलब आप सारे देखें वन डाउन बड़ी स्ट्रॉन्ग बंदे आ रहे हैं, काफी तगड़े बंदे आ रहे हैं।
यार फखर जमान भी स्ट्रांग ही है लेकिन मतलब नाम में स्ट्रांग है लेकिन वन डाउन पे उसकी परफॉर्मेंस नहीं है यार उस तरीके से। अच्छा मिचेल मार्श के बारे में भी लोग बड़ा ये कहते हैं कि उनका कैरियर स्ट्राइक रेट सिर्फ 124 का है और एवरेज कम है ये है वो, लेकिन अगर आप उनकी लास्ट 1 से 2 साल की परफॉर्मेंस उठा के देखो 38 की एवरेज है उमर और अराउंड 134 का उनका स्ट्राइक रेट है तीसरे नंबर पर आके, तो वो तीसरे नंबर पे ठीक बैटिंग कर रहे हैं, ये 50 से ज़्यादा मैचों में कंसिस्टेंटली उनकी ये परफॉर्मेंस आ रही है, 38 की एवरेज 134 का स्ट्राइक रेट, तो विच इज़ गुड।
क्या बात है,
तो
यार बड़ा अच्छा फिट है।
अच्छा और पढ़ें जरा कमेंट, माजरत चाहते हैं जी उन लोगों से क्योंकि कमेंट ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा
थे,
यहाँ पे शो नहीं हो रहे।
अच्छा गौरव चौधरी कह रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात ये पाक और इंडिया दोनों चेज में जाना पसंद करेगी। यार बिल्कुल सही बात है, वही बात है जलाल, एक दफा पहले भी बात हुई थी इस पे जिसपे आप कह रहे थे कि आजकल T20 का ट्रेंड वैसे ही बदल गया है। सही है, आपकी जो टीम्स है वो चेस करना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उनके माइंड में एक टारगेट सेट हुआ होता है, उस हिसाब से खेलती है। और इसका एविडेंस भी हम देखते हैं पाकिस्तान की टीम, तो सही बात है जेनुइन। अच्छा फिर उसके बाद जी मिस्टर गैम्बलर कह रहे हैं भाई खुशदिल अच्छा कीपर है, उसको उसको नहीं कर पाए मैनेजमेंट ने, उसको नहीं कर पाई मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल पीएसएल में बॉलिंग।
अच्छा कीपर ऐसे मैंने इनकी कीपिंग कभी देखी ही नहीं है भाई, अगर ये आप कह रहे हो, अगर आपको पता है तो आप ठीक कह रहे होगे, लेकिन ये बात ठीक है कि उसकी बॉलिंग को यूटिलाइज नहीं किया उन्होंने, तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो
ठीक है,
दूसरी बात क्या है कि तीरथ सिंह कहते हैं बारिश हो गई, मैन मान लो 8 ओवर का हो गया तो 50 रन बनेंगे, आई थिंक आप ये कह रहे हो। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन इंडिया बैटिंग कर रहा हुआ तो 8 में 100 भी हो सकते हैं, पाकिस्तान अगर 8 ओवर में बैटिंग कर रहा और बाबर और रिजवान ओपनिंग पे आ गए तो फिर 50 बन सकते हैं ये हो सकता है।
बाकी यार सही कह रहे हैं। और बाकी जो जो अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको लाजमी दबा दें, ताकि हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। और बाकी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लें, ट्विटर पे हम एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। हाँ बाकी
बिल्कुल
फिलहाल
सर,
पॉडकास्ट वगैरह
और
पे आप बता
ये
दें।
हमारा लाइव स्ट्रीम हो रहा है इस टाइम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विच के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे भी जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ पर भी उसको लाइक फॉलो करें और शेयर करें, और जो भी फीडबैक है उसको कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.talkbeforewicket.com, उस पर जाके भी आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, सारे पॉडकास्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं ऑडियो फॉर्मेट में, अगर आप वो पसंद करते हैं, गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट एडिक्ट, पॉकेट कास्ट वगैरह सब पे हम अवेलेबल हैं, बस गूगल पे टॉक बिफोर विकेट लिखेंगे हम, कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगे। उमेर साहब कहानी ये है कि अच्छा एक ये
पढ़े
आमिर भाई का कमेंट अभी मुझे आया है, ये देखो अब आना शुरू हो गए,
क्या कह रहे हैं?
एक मिनट मैं ज़रा ये इसको साइड पे कर लूँ। आमिर भाई कहते हैं कि इंडिया की लाइनअप के बारे में अगर यू पीपल डिस्कस समथिंग अकॉर्डिंगली अपनी लाइनअप बेहतर बेहतर क्या होगा, बेहतर हो सकेगा, आई थिंक बिल्कुल करेंगे भाई आमिर भाई,
बेहतर की जा सके।
इंडिया की भी करेंगे हम, अभी स्क्वाड पे कोशिश करेंगे सारी टीमों का, जो भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके स्क्वाड पे हम बात करें आगे आने वाली हर लाइव
अच्छा
स्ट्रीम के
मजे
अंदर।
की बात ये आमिर भाई की बात से मुझे याद है कि देखिए पाकिस्तान की लाइनअप पे थोड़ी सी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंजेस टीम में ना, जो प्लेइंग 11 है।
हाँ
इंडिया की ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो इंडिया में जो पैटर्न है वो काफी कांस्टेंट है, मतलब कि हमें पता है केएल राहुल आएगा, रोहित आएगा, विराट आएगा, स्काई आएगा, पांडे आएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ा आता है कि
कार्तिक
कार्तिक या पंत,
कार्तिक ही आएगा,
कार्तिक हाँ ज्यादा ज्यादा वोट उसके है, फिर हुडा आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपके बॉलर्स होंगे, तो मतलब वहां पे थोड़ी ना वो इतना ज्यादा वो नहीं लग रहा पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहते हैं कि ये वो चेंज हो
नहीं
इसमें।
उनकी बैटिंग तो बिल्कुल स्टेबल है, बस बॉलिंग कॉम्बिनेशन में उनका थोड़ा सा है मसला, वो चेंज करेंगे आई थिंक। हुडा का भी चांस कम ही लग रहा है खेलने का, शायद अश्विन वगैरह को प्रेफरेंस दें क्योंकि अश्विन की परफॉर्मेंस अच्छी है, हुडा से तो बॉलिंग ही हार्डली बॉलिंग करवाई है तो उसको शायद नहीं डालेंगे। अच्छा भाई ये बताओ, बाबर, रिजवान, फखर के अलावा कोई बैटर पाकिस्तान का न्यू बॉल को फेस नहीं करता है? गौरव साहब पाकिस्तान में इस टाइम के ओपनर ऊपर ना ओपनिंग की भरमार हो चुकी हुई है, डोमेस्टिक में भी सारे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना वो ओपनर ही हैं, अब मसला ये है कि बाबर और रिजवान वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जितने ओपनर हैं उनको हम मिडल ऑर्डर बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हो फखर, शान, और डोमेस्टिक में भी जो हमारे ओपनर थे उनको चीफ सेलेक्टर ने कहा आप मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर लें क्योंकि ओपनिंग में कोई जगह अवेलेबल नहीं है, तो ये अब अलमिया
सही
चल रहा है
बात है।
पाकिस्तान का, ये हालात चल रहे हैं, तो देखें अब क्या होता है। तीरथ सिंह कहते हैं लेकिन आपकी टीम हमें अब हराने लगी है, हमको भी डर लगता है आपके सही से
यार तिराज भाई मैं तो कहता हूँ अच्छी बात नहीं है, थोड़ा टफ हो जाता है मैच, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले वाली सीरीज अगर हम देखें पाकिस्तान इंडिया की, तो उसपे तो ज्यादा इंडिया ही डोमिनेट करी होती थी। अब चले शुक्र है थोड़ा बहुत वो बैलेंस हो रही है चीजें, मतलब कि मजा आता है आखिरी बॉल तक मैच जाता है। ये सीन है।
यार देखो डर लग रहा है आजकल तो, बाइडेन को भी पाकिस्तान से बड़ा डर लग रहा है, तो पाकिस्तान की तो दहशत हर जगह है, न्यूज में भी पाकिस्तान से हर कोई डर रहा है। अच्छा ये एक कमेंट इनसे मैंने पूछा था ना कि आप खुश दिल को क्यों कर रहे हैं आसिफ और इफ्तखार से। अच्छा तो ये कहते हैं, यार मैं इंडिया से हूँ, खुशदिल को इसलिए बैक कर रहा हूँ क्योंकि ऑलराउंडर हमेशा दोनों डिपार्टमेंट में यूज़ करना चाहिए, तभी सक्सेस होगा। बात आपने बहुत प्यारी की है, लेकिन अब ये बात बाबर आजम नहीं ना यूज़ करता मेरे भाई। बाबर आजम खुशदिल से एशिया कप से लेके अब इंग्लैंड की सीरीज
बैट्समैन ही
तक
कंसीडर कर रहा।
कोई बॉलिंग एक ओवर भी नहीं करवाया उससे, आई थिंक। तो ये मसला है ना। अच्छा गौरव साहब कहते हैं, भाई मैंने इस टीम के बारे में पूछा, अगर कम ओवर का मैच होता तो कौन कर सकता है ओपन। अच्छा, आप उस तरह पूछ रहे थे। यार
करंट टीम का पूछ रहे।
आसिफ और फखर को ओपनिंग
करंट
करनी
में तो
चाहिए
यार
आई
आई
थिंक।
थिंक नहीं, ये उसका पूछ रहे जलाल जोनसी, हमने बनाई है ना टीम, हमने बनाई है या जो पॉसिबल वाली है।
आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि अगर ओवर मैच कम ओवर्स का होता है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 8 ओवर्स का मैच
हाँ
होता है पाकिस्तान इंडिया का, तो फिर पाकिस्तान से ओपनिंग कौन कर सकता है। आई थिंक ये पूछ रहे हैं।
अच्छा यार, उस पे ओपनिंग हैदर अली को तो लाना चाहिए टॉप पे।
अब वही डिपेंड करता हैदर खेलता है या आसिफ खेलता है, इन दोनों में से जो भी खेलता है वो आएगा शायद। अगर फखर खेलता है तो
वो
फखर
आएगा,
आएगा, तो मेरा ख्याल है आसिफ और
हाँ फखर आएगा।
फखर दोनों तो मेन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे, क्योंकि 3 बैटर होते हैं, तो उस पे आप इफ्तखार, शदाब, नवाज, नवाज आई
नवाब,
थिंक
इफ्तखार, शदाब, नवाज,
इनमें से कोई हो
ये
सकता
तीन। हाँ
है।
नवाज, शदाब, इफ्तखार, यही तीन ऑप्शंस बनते हैं डाउन द लाइन। मतलब बाबर और रिजवान नहीं बनते।
यार
हद है
क्यों करते हो तुम बाबर और इफ्तखार के और रिजवान के साथ इस तरह। अच्छा उमेर साहब पॉइंट ये है कि मैंने जाना है अब एयरपोर्ट भाई को छोड़ने, तो सर
बिल्कुल, आपने बिल्कुल
इजाजत मैं
भाई को
लूंगा।
बोल दीजिएगा बेस्ट ऑफ लक,
बिल्कुल
भाई
सर,
को बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिएगा जो वो जा रहे हैं टूर पे, एडवेंचर यूरोप पे। सही है, तो
बिल्कुल सर,
चलें फिर जलाल, मिलते हैं कल। कल का टाइम हम लोग आपको अभी अभी तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम लोग इंस्टाग्राम पे भी बता देंगे
अभी ना ही बताएं तो
क्योंकि
बेहतर।
काफी ज्यादा बिल्कुल
आएंगे
वैसे ही
जरूर
हमारा पास
इंशाल्लाह।
रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, आएंगे जरूर, ये गारंटी है।
अच्छा अब ये भी हो सकता है उमेर
लेकिन इस दफा
के
कोशिश करेंगे एटलीस्ट जो टाइम बताए उस पे आ जाए।
वॉच अलोंग वाला कंफर्म कर देंगे कि रात को वॉच अलोंग करनी है नहीं करनी। रात मेरी रात मतलब आप लोगों की दोपहर 1 बजे पाकिस्तान इंग्लैंड का वार्म अप मैच है। अगर मैंने वॉच अलोंग किया तो उमेर साहब कल फिर आप अकेले आएंगे, ये देखना पड़ेगा। सही हो गया। चले जी आप लोग सारे
नहीं, बल्कि आए यार जलाल, मैं ऑफिस में बैठ के साथ वाली टैब में वो आपकी आपको सुन रहा हूँ, बल्कि आपके साथ मैं वो क्या कहते हैं एंगेज भी कर रहा हूँ अगर सीन बना।
ठीक है, नहीं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं। चलो यार फिर मुझे इजाजत दो, आप लोग भी ख्याल रखो। मिस्टर गैम्बलर आपका आखिरी कमेंट है, इन
चले
पिचों में
यार,
प्रॉपर
ख्याल
बैटर
रखना।
ही चलेंगे, याद रखना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।
ओके जी, ख्याल रखें, बाय बाय।